एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी की एक बहुत ही प्रभावशाली लेखिका वर्जीनिया वुल्फ और उनके दूसरे उपन्यास नाइट एंड डे पर बात करेंगे।
जी, वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्न अंग्रेजी साहित्य में जिनका नाम बहुत बड़ा है।
हाँ बिल्कुल, ब्लूम्सबरी ग्रुप की वो सदस्य थी, उस जमाने के लेखकों विचारकों का एक खास ग्रुप, और उन्होंने अपने पति लियोनार्ड के साथ हॉगार्थ प्रेस भी शुरू किया था।
हाँ, जिसने कई अहम लेखकों को दुनिया के सामने रखा।
तो ये जो उपन्यास है नाइट एंड डे, ये 1919 में आया था।
जी, और ये वुल्फ के लेखन सफर में एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर आता है। मतलब ये उनके शुरू के थोड़े पारंपरिक स्टाइल और जो बाद में उन्होंने चेतना प्रभा मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली तकनीक अपनाई,
हाँ
उसके बीच कहीं खड़ा है, एक पुल जैसा।
सही कहा, और लिखा भी गया था पहले विश्व युद्ध की उथल पुथल के ठीक बाद।
हाँ, और कहानी है एडवर्डिन लंडन की, मतलब युद्ध से ठीक पहले का वो दौर, ऊपर से शांत सख्त रिवाजों वाला, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा था।
जब ये आया था तो रिएक्शन भी मिले जुले थे, है ना?
बिल्कुल, कुछ लोगों को इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई पसंद आई, पर कुछ को लगा कि ये वुल्फ के बाद के कामों जितना एक्सपेरिमेंटल नहीं है।
तो आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ कहानी न सुने बल्कि किरदारों के अंदर की जो कश्मकश है उसे समझें।
हाँ, कि कैसे वो समाज की उम्मीदों और अपनी असलियत के बीच फंसे हैं, कैसे सच्चे रिश्ते खोज रहे हैं।
और वुल्फ उस दौर की महिलाओं की जो बौद्धिक जिंदगी थी, उनकी जो संभावनाएं थीं, उन्हें कैसे देख रही थीं।
बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो उपन्यास बार बार उठाता है
कि अपनी पब्लिक इमेज जिसे दिन कह लें और अपना जो अंदरूनी निजी सच है यानी रात, उसमें संतुलन कैसे बने, क्या ये मुमकिन भी है?
इसी सवाल के साथ चलते हैं हिल्बरी परिवार की दुनिया में।
कहानी हमें ले जाती है लंदन के एक बहुत ही संभ्रांत इंटेलेक्चुअल परिवार हिल्बरीज के घर में।
माहौल पूरा साहित्यिक है। परिवार पर एक मशहूर कवि दादा का नाम हावी है, और घर की मालकिन श्रीमती हिल्बरी वो तो बरसों से अपने पिता की जीवनी लिख रही हैं।
हाँ, और वो जीवनी कभी खत्म ही नहीं होती लगती, शायद ये भी एक प्रतीक है उस बोझिल परंपरा का जिसे वो ढो रही हैं।
और इसी माहौल में है हमारी मुख्य पात्र कैथरीन हिल्बरी।
खूबसूरत, समझदार, अपने परिवार की विरासत के लिए जिम्मेदार, सब यही चाहते हैं कि वो किसी अच्छे लेखक या बुद्धिजीवी से शादी करे, घर संभाले, एक परफेक्ट साथी बने।
लेकिन यही वुल्फ का कमाल है। बाहर से वो शांत दिखती है, शायद थोड़ी उदासीन भी, पर उसकी असली दुनिया कहीं और है।
कहाँ?
उसका पैशन साहित्य नहीं बल्कि गणित और खगोल विज्ञान है, लॉजिक, ऑर्डर, क्लैरिटी की दुनिया।
अच्छा।
हाँ, सितारों और नंबरों में उसे वो सुकून मिलता है, वो सच्चाई मिलती है जो भावनाओं और सामाजिक रस्मों की उलझी हुई दुनिया में नहीं है। ये उसकी अपनी रात है जिसे वो सबसे छुपाती है।
तो कहानी की शुरुआत में कैथरीन की जिंदगी एक तरह से पटरी पर दिखती है।
जी,
उसकी सगाई हो चुकी है विलियम रॉडनी नाम के कवि से,
काफी महत्वाकांक्षी पर सोच में पारंपरिक, सब कुछ सेट लगता है।
लेकिन यहीं से असल टकराव शुरू होता है, समाज की उम्मीदों का दिन और कैथरीन की अपनी अंदरूनी सच्चाई की रात। क्या वो हमेशा इसे छुपाएगी?
और तभी कहानी में एंट्री होती है रैल्फ डैनहम की,
एक बाहरी आदमी कह सकते हैं।
एक वकील है जो लेखक बनना चाहता है, हिल्बरी परिवार के सर्कल से बाहर का। वो कैथरीन के उस शांत रिजर्व्ड बर्ताव के पीछे कुछ और देखता है, एक बौद्धिक गहराई, एक राज, और वो खिंच जाता है।
उसका आना जैसे ठहरे पानी में हलचल पैदा कर देता है।
बिल्कुल, रैल्फ जानबूझकर कैथरीन से मिलता है, बात करता है।
उनकी बातचीत सुनाए अक्सर बहस में बदल जाती है।
हाँ, एक ही होती है, लेकिन उसी टकराव में कैथरीन को पहली बार लगता है कि कोई है जो उसे बौद्धिक स्तर पे बराबर समझता है। ये चीज विलियम के साथ उसके रिश्ते में बिल्कुल नहीं है।
विलियम का प्यार जताने का तरीका तो शायद ज्यादा औपचारिक होगा।
हाँ, बहुत सतही, जबकि रैल्फ उसे चैलेंज करता है, सोचने पे मजबूर करता है, और ये फर्क कैथरीन को महसूस होने लगता है।
कहानी में और भी किरदार है जो अहम है, मेरी डैचिट जैसे।
हाँ, मैरी डैचिट कैम्ब्रिज ग्रेजुएट है, महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए जो आंदोलन था उसमें एक्टिव है, एक तरह से उस दौर की नई औरत है वो।
इंडिपेंडेंट,
बिल्कुल, अपने काम में डूबी हुई, और वो चुपचाप रैल्फ से प्यार भी करती है। कहानी में वो अक्सर एक समझदार आवाज, एक अलग नजरिए की तरह सामने आती है।
और दूसरी तरफ विलियम रॉडनी है, कैथरीन का मंगेतर।
जी, विलियम पारंपरिक, थोड़ा अहंकारी भी, उसे लगता है दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, वो चाहता है कैथरीन उसकी कविताओं की फैन हो, उसकी तारीफ करे।
लेकिन कैथरीन की तरफ से वो दिलचस्पी नहीं मिलती होगी।
बिल्कुल नहीं, और इससे वो निराश होता है। वो सामाजिक दिखावे नियमों का प्रतीक है।
तो रिश्ते धीरे धीरे और उलझते जाते हैं।
हाँ, बहुत। कैथरीन की विलियम से ऑफिशियली सगाई हो जाती है, पर रैल्फ के साथ उसकी नजदीकी बढ़ती जाती है, दिमागी तौर पर भी, जज्बाती तौर पर भी।
और विलियम?
विलियम कैथरीन की इस दूरी से परेशान होकर उसकी छोटी कजिन कैसेंड्रा ओटवे की तरफ ध्यान देने लगता है। कैसेंड्रा ज्यादा भोली है, आसानी से इंप्रेस हो जाती है, विलियम की तारीफें करती है, तो वहां एक और एंगल बन जाता है।
अच्छा, एक पैरेलल अट्रैक्शन।
जी, और इसी उथल पुथल में रैल्फ भी एक कमजोर पल में मैरी को शादी के लिए पूछ लेता है। शायद कहीं तो उसे स्थिरता चाहिए थी।
लेकिन मैरी?
मैरी बहुत समझदार है। वो रैल्फ के मन की उलझन जानती है, कैथरीन के लिए उसका खिंचाव भी। वो बड़ी हिम्मत से पर दर्द के साथ मना कर देती है।
ये उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा।
बहुत बड़ा। वो रैल्फ से इमोशनली दूरी बना लेती है और अपनी सारी एनर्जी अपने काम, अपने आंदोलन में लगा देती है। ये दिखाता है कि उसकी खुशी किसी मर्द पर निर्भर नहीं है।
तो ये सिर्फ एक लव ट्राइंगल नहीं है, ये तो एक क्वाड्रेंगल है जहां हर कोई कुछ तलाश रहा है।
सही कहा। अलग अलग तरह के रिश्ते, प्यार, सम्मान, संतुष्टि की तलाश। यहाँ वो क्यू गार्डन्स वाला सीन बहुत जरूरी है।
हाँ, जहाँ रैल्फ पहली बार खुलकर अपने प्यार का इजहार करता है कैथरीन से।
और वो पल कैथरीन की आंखें खोल देता है। उसे पहली बार उस पैशन का एहसास होता है जो विलियम के साथ कभी नहीं था। अब वो इस सवाल को टाल नहीं सकती, क्या वो सच में विलियम से शादी कर पाएगी।
आखिरकार कैथरीन हिम्मत करती है। वो समझ जाती है कि बिना प्यार के, सिर्फ समाज के लिए वो विलियम से शादी नहीं कर सकती।
ये फैसला लेना आसान नहीं होता होगा, परिवार, समाज, सबका डर, पर वो ये कदम उठाती है
और सगाई टूट जाती है।
हाँ, आपसी सहमति से, पर जाहिर है काफी दर्द और तनाव होता है। विलियम शायद कुछ राहत भी महसूस करता है और लगभग तुरंत कैसेंड्रा में प्रपोज कर देता है,
और वो मान लेती है
खुशी खुशी।
तो अब कैथरीन और रैल्फ के लिए रास्ता साफ हो गया।
कहने को तो हाँ, पर यहीं से उनके रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होती है। ये रास्ता फूलों का नहीं, कांतों का है।
मतलब?
उनके बीच गहरी गलतफहमियां हैं। क्लास का फर्क है, स्वभाव का अंतर है। कैथरीन ज्यादा लॉजिकल, शांत है, रैल्फ ज्यादा जज्बाती, आइडियलिस्टिक।
वो मिलते हैं, बातें करते हैं, पर शायद एक दूसरे को पूरी तरह समझ नहीं पाते।
बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप्स हैं, शक पैदा होते हैं, असुरक्षा होती है। कैथरीन को डर लगता है कि शादी करके वो अपनी आजादी, अपनी पहचान खो देगी।
और रैल्फ?
रैल्फ को जलन होती है। उसे डर लगता है कि वो कैथरीन को कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाएगा, कि उनके बीच हमेशा एक दूरी बनी रहेगी।
ये तो काफी मुश्किल दौर है।
बहुत। और इस मुश्किल वक्त में वो दोनों मदद के लिए मैरी डैचेट के पास जाते हैं।
अच्छा, मैरी के पास?
हाँ, मैरी जो अब अपनी जिंदगी में अपने काम में सेटल हो चुकी है, वो उन्हें एक बाहरी, शांत, समझदार नजरिया देती है। वो जज नहीं बनती, बस एक दोस्त की तरह उन्हें रास्ता दिखाने में मदद करती है।
उसकी अपनी स्थिरता उन्हें सहारा देती होगी।
बिल्कुल।
दिलचस्प ये है कि नॉवेल का अंत किसी टिपिकल हैप्पी एंडिंग जैसा नहीं है। कोई बड़ी शादी, कोई ऐसी घोषणा नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत यथार्थवादी अंत है। कैथरीन और रैल्फ एक समझौते पर पहुंचते हैं।
कैसा समझौता?
कि वो शादी करेंगे, पर अपनी शर्तों पर। ये वो पारंपरिक शादी नहीं होगी जहां दो लोग एक हो जाते हैं। ये एक पार्टनरशिप होगी जहां दोनों की अपनी आजादी, अपनी पहचान बनी रहेगी।
इसे शादी का एक नया मॉडल कह सकते हैं?
हाँ, कह सकते हैं। बौद्धिक बराबरी, आपसी सम्मान और मतभेदों को स्वीकार करने पर आधारित। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की सोच थे।
और आखिरी सीन
बहुत यादगार। कैथरीन और रैल्फ साथ हैं, बातें कर रहे हैं, लंदन की रात को देख रहे हैं। उनके बीच कोई परमानेंट शांति नहीं है, पर एक उम्मीद भरी समझ है। ये अंत नहीं, एक मुश्किल शुरुआत है।
और मैरी का क्या होता है?
साथी, हमें मैरी भी दिखाई जाती है। वो अपने ऑफिस में काम कर रही है, पूरी तरह अपने काम में मग्न है, खुश है। उसकी जिंदगी शादी के बिना भी पूरी है, सार्थक है। ये शादी की कहानी के सामने एक बहुत मजबूत विकल्प की तरह खड़ा है।
चलिए, आप थोड़ा रुककर इसके जो मुख्य विषय हैं उन पर बात करते हैं। पहला तो यही सामाजिक परंपरा बनाम व्यक्तिगत आजादी।
हाँ, हिलबरी परिवार, शादी की उम्मीदें, ये सब दिखाते हैं कि समाज के नियम कैसे हमें सहारा भी देते हैं और बांधते भी हैं। कैथरीन की पूरी यात्रा इसी बंधन से निकलकर अपनी सच्चाई तक पहुंचने की है। धीमी है, पर मजबूत है।
और इसी से जुड़ा है प्यार और कंपैटिबिलिटी का सवाल। क्या प्यार सिर्फ इमोशन है या उसमें समझ और बराबरी भी चाहिए?
बिल्कुल। विलियम और कैसेंड्रा का रिश्ता एक तरह की पारंपरिक कंपैटिबिलिटी दिखाता है। शायद कुछ लोगों के लिए वही ठीक हो, पर कैथरीन और रैल्फ कुछ ज्यादा गहरा ढूंढ रहे हैं।
जहाँ विचारों का मिलना ज्यादा जरूरी है, एक दूसरे की आजादी का सम्मान करना।
हाँ, वुल्फ यही पूछ रही हैं, असली मेल क्या है? क्या वो सिर्फ सामाजिक मेल है या कुछ और?
एक और बहुत जरूरी बात है महिलाओं की बौद्धिक और सामाजिक दुनिया।
जी, वुल्फ सिर्फ कैथरीन की कहानी नहीं कह रही, वो मेरी डैचिट के जरिए एक प्रोफेशनल, पॉलिटिकली एक्टिव औरत का चित्र बनाती हैं, जो अपना रास्ता खुद चुनती है। कैसेंड्रा पारंपरिक पत्नी बनती है।
और कैथरीन का गणित और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट?
वो प्रतीक है उन दिमागी क्षमताओं का जिन्हें उस दौर में औरतों के लिए सही नहीं माना जाता था। वुल्फ दिखा रही हैं कि औरतों का मन, उनकी सोच कितनी बड़ी हो सकती है।
नॉवेल का टाइटल भी यही कहता है, नाइट एंड डे। ये थीम बार बार आती है।
हाँ, दिन मतलब हमारा भारी चेहरा, सामाजिक रोल, और रात मतलब हमारा अंदरूनी सच, हमारी इच्छाएं, डर, सपने। कैथरीन की गणित की दुनिया उसकी रात है, जिसे वो दिन की उम्मीदों से बचाती है।
और ये संघर्ष सिर्फ कैथरीन का नहीं है, लगभग हर किरदार अपने पब्लिक और प्राइवेट सेल्फ के बीच जूझता दिखता है।
बिल्कुल।
और हाँ, लिटरेचर और इंटेलेक्चुअल लाइफ की क्या भूमिका है इसमें? श्रीमती हिलबेरी की वो ना खत्म होने वाली बायोग्राफी, रैल्फ का राइटर बनने का सपना,
किरदारों के बीच किताबों, आइडियाज पर लगातार बहसें, ये सब दिखाता है कि वुल्फ के लिए दिमागी कनेक्शन रिश्तों में कितना अहम है। ये सिर्फ दिल की नहीं, दिमाग की भी कहानी है।
वुल्फ की स्टाइल पर भी थोड़ी बात करनी चाहिए। नाइट एंड डे में वो एक तरह से सब जानने वाले नरेटर का इस्तेमाल करती हैं, है ना?
जी, जो हमें अलग अलग किरदारों के मन में झांकने देता है। ये उनके बाद के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जितना रेडिकल नहीं है, जहां विचारों की धारा बस बहती चली जाती है।
हाँ, उतना फ्री फ्लो नहीं है।
लेकिन यहां भी किरदारों के अंदर क्या चल रहा है, उनकी सोच कैसे बदल रही है, इस पर बहुत गहरा फोकस है। ये वुल्फ के बाद के स्टाइल की आहट जरूर देता है। बाहरी एक्शन से ज्यादा मन की हलचल इंपॉर्टेंट है।
सही कहा। और सिंबल्स का इस्तेमाल भी कमाल का है। रात और दिन तो है ही। टेम्स नदी।
हाँ, टेम्स नदी, जिसके किनारे वो अक्सर मिलते हैं, लड़ते हैं, सुलझते हैं। वो जैसे वक्त का बहाव है, इमोशंस का उतार चढ़ाव, बदलाव की जगह।
और कैथरीन के लिए गणित और सितारे,
वो लॉजिक, क्लैरिटी, सच्चाई की दुनिया है। इंसानी रिश्तों की उलझी, धुंधली दुनिया से एकदम अलग। एक एस्केप भी और एक एंकर भी।
इसमें हल्का ह्यूमर या व्यंग्य भी है?
हाँ, थोड़ा व्यंग्य है, खासकर साहित्यिक दिखावे को लेकर और विलियम रॉडनी के किरदार में। और लंदन शहर का माहौल, लाइट और शैडो का इस्तेमाल, ये सब कहानी को और गहरा बनाते हैं।
तो ये उपन्यास पढ़ने के बाद मतलब क्या फीलिंग रहती है? ये कोई बहुत पैशनेट, थ्रिलिंग कहानी तो नहीं है?
नहीं, ये धीमी आंच पर पकने वाली चीज है। इसे पढ़कर शायद बहुत तेज जज्बात ना आए, पर एक गहरी सोच, एक शांत समझ पैदा होती है। इसमें वो परी कथा वाले रोमांस का आसान जवाब नहीं है,
बल्कि किरदारों को अपनी जिंदगी की मुश्किल नींव रखते हुए देखने की एक सच्ची सी संतुष्टि मिलती है।
हाँ, एक जटिल पर सच्ची संतुष्टि।
और ये कहीं ना कहीं पढ़ने वाले के अपने अंदर के संघर्षों से भी जुड़ता है। हम सब कभी ना कभी अपनी पब्लिक इमेज और असलियत के बीच का फासला महसूस करते हैं।
बिल्कुल, कैथरीन की यात्रा अपनी सी लगती है, और इसका जो असर रहता है वो है इसका शांत फेमिनिज्म, इसकी ईमानदार आवाज।
ये बात बहुत जरूरी है। वुल्फ ने कैथरीन की जो इंटेलेक्चुअल जरूरतें हैं या मैरी का जो करियर चुनने का फैसला है, उसे उतनी ही गंभीरता दी जितनी कहानी के मेन लव अफेयर को।
जी, और ये उस समय के लिए और शायद आज भी काफी रेडिकल है। ये हमें प्यार, कामयाबी, सार्थकता की बनी बनाई डेफिनेशंस पर सवाल उठाने को कहता है।
ये खुद को और दूसरों को सच में जानने की मुश्किल मगर जरूरी कोशिश की एक गहरी कहानी है।
अंत में, शायद नाइट एंड डे हमें उस हिम्मत के बारे में सिखाता है जो समाज की उम्मीदों और अपने अंदर की आवाज के बीच पुल बनाने के लिए चाहिए। ये आसान नहीं है, इसमें लगातार बातचीत, समझौते करने पड़ते हैं।
और ये तलाश आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि बराबरी, आपसी सम्मान और अपनी स्पेस पर टिके रिश्ते बनाना, ये हमेशा से इंसान की एक गहरी इच्छा रही है ना?
बिल्कुल।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।